ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओके, मैं चैप्टर टू कर रहा हूँ भगवद गीता का, फुल चैप्टर। सो जस्ट सारे श्लोक तो नहीं कर सकता मैं, इसे ओवरव्यू देना चाहता हूँ चैप्टर टू में क्या चल रहा है, क्योंकि चैप्टर टू इम्पॉर्टेंट है और पूरी गीता का बेस है ये। तो चैप्टर टू क्या है? चैप्टर टू का नाम है गीता का सार, जो प्रभुपाद दे रहे हैं। और एक्चुअली का संस्कृत नाम देखोगे ना गीता के चैप्टर्स के, तो वो अलग चल रहे हैं। तो चैप्टर टू का नाम पता है किसी को? संस्कृत नाम गीता प्रेस में पढ़ोगे आप, बाद में एंड में लिखे होते हैं नाम। सो संस्कृत नाम है सांख्या योग, चैप्टर टू का नाम सांख्या योग है। और सांख्या योग व्यासदेव ने तो ऐसे दिया है आचार्यों ने। तो क्यों दिया है? क्योंकि सांख्या का मतलब होता है संख्या, 1 2 3 4 5 6, और योग मतलब लिंकिंग। सो सांख्या योग मतलब कि जो पहले के चैप्टर टू में क्या सिखा रहा है कि संसार में कितनी चीजें जो हमें दिखाई दे रही है और जो नहीं दिखाई दे रही। ओके, लेट्स काउंट इट। सो लेट्स काउंट क्या दिखाई दे रहा है डिटेल्ड, मतलब बिल्डिंग फैन ये सब की बात नहीं कर रहे हम, वो तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। बेसिक चीज़ें क्या क्या दिखाई दे रही हैं? ओके, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, नहीं, पांच तत्व दिखाई दे रहे हैं और पांच इंद्रियां और फिर पांच तन्मात्राएं। तन्मात्राएं मतलब इंद्रियों में देखने की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति पांच, फिर पांच इंद्रियों के विषय वस्तु। सो ऐसी काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मतलब बेसिक चीज़ें। तो ऐसे आप काउंट करते रहो, 1 2 3 4 5 + 5 + 5 + 5 5 × 4 20 हो गए, प्लस कुछ चीजें जो नहीं दिखाई दे रही, और उसको भी काउंट करना चाहिए, जैसे आत्मा और मन बुद्धि अहंकार और फिर परमात्मा। सो सांख्या योग हमें बस एक सिस्टम बता रहा है कि इसे हम काउंट कर सकें, जो दिखाई दे रहा है जो नहीं दिखाई दे रहा, कितनी चीजें हैं। और वो काउंट क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये नॉलेज लेकर ये काउंट करके हमें पता लगा सकते हैं कि एक दूसरे का इसमें संबंध क्या है, मतलब हम क्यों हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें। सो आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, आत्मा का इस संसार से क्या संबंध है, आत्मा और दूसरी आत्मा का क्या संबंध है, नहीं, तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आएंगी नहीं आएंगी? जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे नहीं करेंगे बच्चे? वो इसने स्टार्स क्यों हैं, दैट्स अ क्वेश्चन। सो ऐसे ये संसार क्यों है, मैं क्यों हूँ, भगवान क्यों है, सारे क्वेश्चंस हैं। सो उसके वो सांख्या योग को प्रोवाइड करते हैं आंसर उसके, इसलिए इसका नाम सांख्या योग है, क्योंकि इस चैप्टर में सब चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइडेड है। सो बट प्रभुपाद ने इस चैप्टर का नाम रखा गीता का सार, वो संस्कृत नाम से नहीं रखा प्रभुपाद ने। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है गीता का सार। प्रभुपाद अपने आखिरी इस श्लोक के आखिरी, मतलब आखिरी पैराग्राफ में, इस अध्याय के आखिरी श्लोक के आखिरी लाइन में प्रभुपाद लिख रहे हैं, शीला भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। सी, भक्ति विनोद ठाकुर ने इस चैप्टर का नाम दिया, इसलिए प्रभुपाद ने नाम रख दिया कि इस, वरना कोई कहेगा भी प्रभुपाद ने तो यथारूप ट्रांसलेट ही नहीं की, नाम तो यथारूप है, नाम सांख्या योग है, वो गीता का सार रख रहे हैं। सो भक्तियों ठाकुर ने ऐसा लिखा है, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें, मेन सांख्या मेन तो डिस्कशन ये है, ठीक है, मगर चैप्टर में भक्ति के बारे में डिस्कस्ड है, प्रेम के बारे में डिस्कस्ड है, जिसको प्रेम मिल चुका है उसके क्या लक्षण है वो डिस्कस्ड है, और फिर धर्म के बारे में डिस्कशन है। प्रिटी मच जो भी आप सीख रहे हो, सब कुछ और सीखने वाले हो, वह से चैप्टर टू में। तो चैप्टर टू पढ़ के आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली नहीं होनी चाहिए अगर आप इंटेलिजेंट हो तो। मगर प्रॉब्लम ये है कि इंटेलिजेंट इस संसार में कोई है ही नहीं, सब शूद्र हैं, मन बुद्धि है। इसलिए चैप्टर टू के बाद चैप्टर थ्री, चैप्टर फोर, चैप्टर 18 तक है। अगर हम सब इंटेलिजेंट होते, सत्योग होता ना, तो चैप्टर टू पे खत्म आ दी गीता, कलयुग है। सो इसलिए भगवान ने और भी चैप्टर्स इसी बेसिकली इसी को और एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में। और अगर आप इंटेलिजेंट हो भी, तब भी और की जरूरत पड़ेगी चैप्टर की, क्योंकि अगर आप इंटेलिजेंट हो, आपने चैप्टर समझ लिया, तो कहीं संशय भी तो आएंगे। अब समझ लिया, मगर संशय भी तो आते हैं समझने के बाद, ऐसा थोड़ा ना सब कुछ समझ सकते हो। तो वो संशयों का आंसर करने के लिए भगवान ने बाकी चैप्टर बोले। सो चैप्टर टू पढ़ के आपको दो संशय आ जाएंगे, दो संशय आ जाएंगे या आने चाहिए। और वो संशय क्या है, वो है पहला संशय की भी, तो भक्ति का सब्जेक्ट मैटर क्या है, चैप्टर टू का सब्जेक्ट मैटर क्या है, गोल क्या है, भक्ति, भक्ति है ना गीता, क्या बता रही हूँ भक्ति। तो चैप्टर टू में भी कृष्णा बता रहे हैं भक्ति टॉप मोस्ट है, भक्ति करो प्रेम प्राप्त कर लो, हो गया। मगर फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि ज्ञान बढ़ा या भक्ति बढ़ा है, अर्जुन के माइंड में आ गया। सो उस क्वेश्चन का आंसर भगवान ने चैप्टर थ्री में किया। और एक और क्वेश्चन आएगा, यार वैराग्य बढ़ा या भक्ति बढ़ा है, लोग तो वैरागियों को देखते हैं योगी ज्ञानी नहीं सिद्धि, और ये भक्ति कर रहे हैं बस हरे कृष्णा और पेट में दर्द हो रहा है इनके, कोई सिद्धि भी नहीं है इनके पास, मतलब यू सी। तो ये नेचुरल क्वेश्चन है, दो आएंगे चैप्टर पढ़ के आपको क्वेश्चन आ जाएंगे दोनों। सो उसका आंसर भगवान ने चैप्टर फाइव में किया है। और फिर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो अर्जुन पूछ रहा है, और भी क्वेश्चन पूछा ना अर्जुन ने, इसको क्या हो गया। सो कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो इसलिए चैप्टर टू ऑल दो गीता का सार है, मगर उसको डिटेल्स जानने के लिए आपको और गीता की जरूरत है, या जो कंफ्यूजन आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए और चैप्टर्स की जरूरत है। सो इस अध्याय दो का नाम इसलिए गीता का सार रखा हुआ है। क्लियर नहीं हो गया? सो भी मैं डिस्कस करूंगा तो पता लग जाएगा, बहुत कुछ है इस चैप्टर में, बहुत कुछ है, मगर हम शायद पूरी तरह ना निकाल पाए। इसलिए पूरी गीता पढ़ के आप जब दोबारा चैप्टर टू आओगे ना, तो आपको समझ आएगा इसकी वैल्यू क्या है। इसलिए पूरी गीता पढ़ो फिर चैप्टर टू पढ़ना, तब पता लगेगा इसमें सब कुछ ही है, सब कुछ है इसके अंदर। ओके, क्या क्या है इसके अंदर? तो चैप्टर टू में एक्चुअली चार टॉपिक्स हैं बेसिकली। पहला टॉपिक है सांख्य योग, जो मेन टॉपिक है यहाँ पर, ज्ञान योग। ये क्या है मैं भी बताता हूँ और डिटेल में। दूसरा टॉपिक है स्वधर्म, धर्म क्या है हमारा। तीसरा टॉपिक है कर्म योग, और चौथा टॉपिक है प्रेम, बस। और यही पूरी गीता है, और क्या है, ज्ञान योग, कर्म योग, प्रेम, भक्ति, यही तो है पूरी गीता, और क्या, सब कुछ दिया है भगवान ने। सो पहला टॉपिक है ज्ञान योग, मगर वो ज्ञान योग बताने से पहले भगवान कुछ और कर रहे हैं चैप्टर टू में। ये चैप्टर टू का पता है, जो फर्स्ट श्लोक से लेके टेंथ श्लोक तक भगवान ने गीता शुरू ही नहीं की, और डांट रहे अर्जुन को, है नहीं, डांट रहे कि अर्जुन तुम बिल्कुल नॉनसेंस हो, कन्फ्यूज्ड हो, और अभी मेस्टअप हो तुम्हारा। और फिर उसके बाद ग्यारहवें श्लोक में भगवान शुरू कर रहे हैं गीता। एक्चुअली ग्यारहवें श्लोक के पहले व्यास ने लिखा है श्री भगवान वाचा, तो ये बताने के लिए कि यहाँ से गीता शुरू हो रही है, तो वो यहाँ से भी शुरू कर सकते थे श्री भगवान उवाचा, मगर एक्चुअली उन्होंने नहीं की, उन्होंने भगवान की डांट भी रखी है इसके अंदर। सो ऐसा क्यों है, मतलब ये बताने की जरूरत ही क्या कि भगवान डांट रहे हैं, सीधा यहाँ से शुरू कर देते, ठीक है अर्जुन दुखी है, भगवान ने अपना उपदेश देना शुरू कर दिया। ओमेट भी कर सकते थे, बट ऑफकोर्स उन्होंने डाल दिया क्यों, अब मतलब कृष्णा डांट रहे हैं यहाँ पर, हे पितापुत्र इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत करो, ये तो गाली है सीधा, किसी को बोले कि तू नपुंसक है वो तो पिटोगे, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, हृदय की दुर्बलता त्याग दो, ये तो गाली हो गई, नपुंसक है तू, कमजोर है, मतलब तो किसी को कहोगे क्या चल रहा है। सो क्यों रख रहे हैं भगवान की डांट, ये समझाने के लिए कि अगर भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं तो डांटते भी हैं। अर्जुन को डांट रहे हैं, सो जिसको डांटते हो मतलब उसकी 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 केयर करते हो नहीं, और जिसको निग्लेक्ट करते हो उसको डांटते नहीं हो, उसको छोड़ देते हो नहीं, और क्या भाई सुने नहीं रहा छोड़ दो, इसको प्रेम करते हो उसको डांटते हो नहीं क्यों कर रहा है, उसके पीछे पड़ जाओगे आप, तूने ऐसे किया कैसे है, होता है नहीं होता है। तो वो कुछ एक प्रेम कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी आता है इस सेंस में हो जाता है, पीछे पड़ जाओगे आप उसके। सो ऑफकोर्स वो केयर है नहीं। सो भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं, फिर उसको लॉजिक भी दे रहे हैं, समझा रहे हैं किसी भी तरह, भैया फाइट कर लो, गलत डिसीजन है। सो इसका मतलब है कि भगवान अपने डिवोटीज की केयर करते हैं, और व्यासदेव गीता यहीं से शुरू कर रहे हैं, यही तो भक्ति है और क्या है। भक्त भगवान की चिंता करता है, भगवान भक्त की चिंता करता है, गीता की शुरुआत यहां से हो रही है, भक्ति से। दिखाई नहीं दे रहा मगर अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो शुरुआत यहां से हो रही है। मतलब ये गोल है हमारे लाइफ का कि हम भगवान से कनेक्शन बनाएं, और इस तरह कनेक्शन बनाएं कि हम हमेशा भगवान की चिंता करें, और हम भगवान की चिंता करेंगे तो भगवान हमारी चिंता करेंगे, हमारी केयर करेंगे, भगवान के आशीर्वाद में भगवान की कृपा है, और भगवान के दंड में भी भगवान की कृपा है। सब दंड ही तो दे रहे हैं, वाग्दंड है, फिजिकल नहीं है। सो उसमें अर्जुन को कृपा दिखाई दे गई, इसलिए अर्जुन ने इतनी गाली सुनने के बाद क्या बोला, शिष्यस्ते हम शादी माम, भी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, ये नहीं कि आप मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मतलब दे ही डिडंट डू लाइक दैट, क्योंकि अर्जुन भगवान की कृपा को यहाँ पे समझ रहा है, एक्चुअली समझ रहा है। सो अगर आप गीता पढ़ोगे ना, आपको एक्चुअली शुरू से ही भक्ति नजर आने लगेगी। तो कुछ लोग कहते हैं यार गीता क्या है, गीता में तो प्रेम की बात ही नहीं हुई है, भक्त मतलब वो तो भागवतम में हुई है या और शास्त्रों में, मगर एक्चुअली गीता में भी शुरुआत ही प्रेम है और अंत भी प्रेम है, और मैसेज, और भगवान अब जो मैसेज देंगे वो हमें इस प्रेम तक लाने के लिए दे रहे हैं, किसी तरह हमें यहाँ तक पहुँचना है इस प्रेम तक, वरना वी लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, वरना मनुष्य जीवन वेस्ट हो गया। सो किसी तरह भगवान से कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, उसका तरीका अब भगवान अपना उपदेश दे रहे हैं कि इस प्रेम तक मैं पहुंचोगे ऐसे, अर्जुन की तरह हम भक्त कैसे बन सकते हैं, आइडिया ये कैसे पहुंचे वहां तक, कैसे भगवान से कनेक्शन बनाए। सो अब भगवान ने पहला टॉपिक जो शुरू किया है वो सांख्य योग है। सो 11 श्लोक से लेके आई थिंक 38 श्लोक तक भगवान ने 11 से 38 श्लोक तक भगवान ने सांख्य योग के बारे में बात की है, ज्ञान योग। तो सांख्य योग क्या है मैंने भी बताया, एनालाइज करना, मगर सांख्य योग में मेन चीज है, बहुत सारी चीजें नहीं, इतनी सारी चीजें, विषय वस्तु, इंद्रिय, चेतना, इतनी सारी चीजें दिखाई दे रही है हमें, भगवान कह रहे हैं जो भी दिखाई दे रहा है मेन चीज है, मेन टीचिंग सांख्य योग की है। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें, इतना कॉम्प्लेक्स है, भागवतम पढ़ो, बहुत कॉम्प्लेक्स है भैया, आपको 5 तत्व दिखाई दे रहे हैं, 5 इंद्रियां, और फिर 5 विषय वस्तु, 5 तन्मात्राएं, फिर 3 गुण भी दिखाई दे रहे हैं, जो दिखाई नहीं दे रही चीजें, प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, फिर आत्मा, परमात्मा, फिर रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, फिर मन, अहंकार, बुद्धि भी दिखाई नहीं दे रही, फिर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, मन और अहंकार से मिलके कैसे विषय वस्तु बनाते हैं, तन्मात्राएं बनाती हैं, और फिर उसके बाद शरीर में वात, पित्त, कफ, 5 तरह की वायु हैं, ये 3 जो वात, पित्त, कफ हैं, इसका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है 3 मोड से, आप पागल हो जाओगे। ये 5th कैंटो में सब कुछ लॉर्ड कपिल ने एक्सप्लेन किया है। अरे भैया ठीक है, अब ये सब कुछ तो है साइड में रखो, हरे कृष्णा ये अच्छा है। सो भगवान को पता है कि ये सारी चीज़ें ना एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ये नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान ने इस पूरा सांख्य योग का सार निकाल दिया, और हमें यहाँ 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक दे दिया। तो कह रहे हैं यार तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो एक चीज़ समझ लो, सांख्य योग मतलब 2 चीज़ें, एक शरीर और एक आत्मा, आत्मा शरीर से अलग है, ये बेसिस है सांख्य योग का। बस अब शरीर में क्या क्या चीज़ें, संसार में क्या चीज़ें, वो अपने फिगर आउट कर लो, मगर ये बेसिक है, जैसे तेल और पानी कभी नहीं मिलता, उसी प्रकार आत्मा और शरीर, और शरीर से संबंधित जो चीज़ें, शरीर में जो चीज़ें हैं वो कभी नहीं मिलती, वो अलग है। तो भगवान ने इसलिए दूसरे अध्याय में पहले आत्मा और शरीर की बात की है, नहीं ये आत्मा शरीर बिल्कुल अलग है, आत्मा अलग है शरीर अलग है, शरीर बदलता रहता है आत्मा नहीं बदलती। प्रभुपाद की सारी शिक्षाएं इस पे बेस्ड है कि तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, नहीं कितने लेक्चर में कितने टीचिंग में प्रभुपाद यही बोलते जा रहे हैं। अब भगवान ने भी गीता यहाँ से शुरू की क्योंकि ये नॉलेज भक्ति का बेस है, इसको समझे बिना भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि करोगे क्यों? अगर आप शरीर ही हो तो शरीर के लिए काम करेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। पहले कन्विंस करना पड़ता है ना, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, तो आत्मा के लिए काम करो, आत्मा के लिए क्या काम है? भगवान से भगवान की भक्ति करना, दैट्स ऑल। सो इसलिए सांख्या योग भक्ति का आधार बनता है और हमें सेवा करने में दृढ़ता देता है, नहीं है नहीं आप सेवा कर रहे हो धीरे धीरे सेवा करते करते कभी थक जाते हैं, हम थक नहीं जाते, या ओल्ड हो गए बीमारियां आ गई चल नहीं पा रहे चैंटिंग नहीं हो रही, तो फिर भक्त क्या अपने आप को याद दिलाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। थक कौन रहा है?
शरीर
थक रहा है या हम थक रहे हैं? कौन थकता है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, ये सांख्या योग का क्वेश्चन है। शरीर थक रहा है, हम थक रहे हैं, थक रहा शरीर है मगर फील हमें हो रहा है, फील तो आपके हो रहा है, शरीर थोड़ा ना फील करेगा, शरीर तो जड़ है, ये थोड़ा ना फील करेगा, है नहीं? मतलब गाड़ी में जा रहे हो तो गाड़ी थकी हुई चल रही है, थकी हुई थके हो कौन चल रहा है, गाड़ी या ड्राइवर?
ड्राइवर।
थका हो कौन चल रहा है? गाड़ी चल रही है। मतलब पुराना नहीं, मतलब मैं अंडरस्टैंड, मगर चल कौन रहा है थका हुआ? गाड़ी नहीं, गाड़ी पुरानी है, अंजर पंजर टूटे हुए हैं, पेट्रोल खत्म हो रहा है, मगर फील किसको हो रहा है? अनुभव ड्राइवर को हो रहा है, फील थोड़ा ना गाड़ी को हो रहा है, मैं थका हुआ थकी हुई चल रही हूँ, बोला रहा यार क्या थकी हुई चल रही है, मगर एक्चुअली उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है गाड़ी के साथ, अनुभव उसको हो रहा है। तो भगवान ये समझा रहे हैं कि शरीर को जब थकता है भक्ति करते करते, तो डिवोटी क्या बोलता है अपने आप को? डिवोटी बोलता है यस शरीर थक रहा है, अनुभव मुझको हो रहा है, मगर मैं आत्मा हूँ, आत्मा कभी थकती नहीं। सो अगर मैं किसी तरह ये नॉलेज इस्तेमाल करके कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, और अपने आप को याद दिलाऊं कि मैं आत्मा हूँ, मुझे शरीर से कुछ लेना देना नहीं, गाड़ी थकी हुई चलती रहे मुझे क्यों फ्रस्ट्रेट होना है? मेरे फ्रस्ट्रेट होने से क्या होगा? क्या होगा? और ऊपर मैं चला नहीं पाऊंगा सही से, नहीं तो ठीक है चल रही है तो मैं तो खुश रहूं। तो डिवोटी इसलिए जब भी उसके कभी शरीर में प्रॉब्लम आती है, थकता है, तो अपने कहा चलाते हैं मैं आत्मा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे शरीर की चीज़ों से परेशान नहीं होना है, मैं शरीर थक रहा है मुझे इससे परेशान नहीं होना, और मैं अपना काम करता रहूँगा, मैं अपना जप करता रहूँगा, मैं भगवान की भक्ति करता रहूँगा, मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं होना, क्योंकि आप जैसे ही फ्रस्ट्रेट हो गए भगवान को भूल जाओगे। अगर आप अनुभव करने लगे जो शरीर में हो रहा है भगवान को भूल जाओगे। सब कुछ थोड़ा बहुत तो अनुभव होगा ही नहीं, बिल्कुल तो नहीं कर सकते, आप थक गए तो फील तो हो गई थकोगे, मगर आप इस ज्ञान से उस चीज़ को पार कर जाओगे, ज्ञान से पार कर जाओगे। सो आप ट्राई करके देख लो, आप कभी थके हो चैंटिंग नहीं हो रही तो आप ये पढ़ो श्लोक, देहिनोऽस्मि रथा देहे कौमारं यौवनं जरा अविनाशी तु तद्विद्धि न सर्वमिदं ततम, सारे गीता के श्लोक, आत्मा कभी नहीं मरती, कभी कुछ नहीं होता, तो इमीडिएटली आपको आएगा नहीं नहीं मैं करता रहूँगा चैंटिंग, मैं भक्ति करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ये शरीर की वजह से मुझे थकावट फील हो रही है, मैं कहा मैं नित्य हूँ ऋषि लग हूँ इसलिए मैं भक्ति करता हूँ, करते रहोगे तो थकावट भी खत्म हो जाएगी, आप देख लेना होता है कभी, होता है नहीं होता है ऐसा? चैंटिंग में तो होता ही है, चैंटिंग करते हो फिर मन थोड़ा बोर होता है, थकावट आती है, मगर आप रोक के करते रहोगे ना कि मैं शरीर नहीं आत्मा, मेरा काम तो भक्ति करना, भाड़ में जाए थोड़ी देर बाद अपने आप ही फिर फ्रेश हो जाओगे आप, एक्सपीरियंस है नहीं है? करते रहोगे, छोड़ के आप सो जाओगे फिर तो गए, फिर ऐसा वो करते रहना है बस। सो ये नॉलेज सांख्या योग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन देती है, दृढ़ता देती है, ये ज्ञान दृढ़ता देगा, इसलिए जिसको ये ज्ञान नहीं है वो दृढ़ता से भक्ति नहीं कर पाएगा, भक्ति कर जरूर सकता है दृढ़ता से नहीं कर पाएगा। सो इसलिए सबसे पहला टॉपिक है सांख्या योग, ओके, आत्मा और शरीर का ज्ञान, और इसलिए भी है क्योंकि बिना समझे मैं आत्मा हूँ आप परमात्मा की सेवा करने के लिए प्रेरित हो गई हो गई। लोग पूछते हैं ना हम क्यों करें सेवा भगवान की, पूछते ही है ना क्यों करना है, तो क्या आंसर दोगे आप उसको, आप क्या आंसर देते हो? कोई पूछे आपसे भक्ति क्यों भगवान की सेवा क्यों करनी है, आप क्या बोलोगे? यूजुअल आंसर क्या है?
मनुष्य का एक कर्तव्य
है। हाँ मैं बोलते हैं अभी मनुष्य का कर्तव्य है, स्वभाव है,
जीवात्मा का स्वभाव है।
हाँ तो मतलब आप क्या बोलोगे, मनुष्य का एक कर्तव्य है? वो तो कहेंगे मनुष्य का कर्तव्य समाज की सेवा करना है, करना
जो पशु और समाज मनुष्य में यही अंतर है।
वेल उनके हिसाब से नहीं है, उनके हिसाब से अंतर यह पशु और मानव में कि मानव समाज में अच्छी तरह बिहेव कर सकता है और उस पशु नहीं कर सकता, उनके हिसाब से नहीं। तो कहेगा क्यों करनी है भक्ति? सो आपको अगर आपको इसका आंसर करना है ना क्यों करनी है भक्ति, तो आपको आत्मा कॉन्सेप्ट लाना ही पड़ेगा। अब बिना लाया आपको कन्विंस ही नहीं कर सकते, आप कैसे करोगे? ओके आपका कर्तव्य हमारा कर्तव्य ही है, आपको आत्मा कॉन्सेप्ट लाना ही पड़ेगा कि भैया देखो तुम शरीर हो तुम आत्मा, आत्मा का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। शरीर बदलता रहता है, आत्मा कभी नहीं खत्म होती, इसलिए भक्ति आधा इंपॉर्टेंट है। बिना आत्मा कॉन्सेप्ट के आप कन्विंस ही नहीं कर सकते उसको, इम्पॉसिबल है। अगर आपने ये भी कन्विंस कर दिया भगवान है, तब भी नहीं कन्विंस कर पाओगे कि भगवान की भक्ति करनी है। ठीक है भगवान है तो क्या, भगवान तो अपने धाम में बैठे हैं, समाज मेरे सामने, समाज की सेवा करूंगा मैं। लोग यही कहते हैं ना, हाँ ठीक है क्या हो गया, हम भी मानते हैं भगवान है, मगर हमारे सामने तो समाज है ना, हमारी फैमिली है, हम उनकी सेवा करेंगे। सर आप कभी कन्विंस नहीं कर सकते बिना आत्मा के ज्ञान के, इसलिए भगवान सबसे पहले सांख्य योग ला रहे हैं आत्मज्ञान। अबे आत्मा ज्ञान हमें क्यों दे रहे हैं कि जिससे हम भक्ति कर सकें? इसलिए नहीं दे रहे आत्मा ज्ञान कि आप आत्मज्ञानी बन जाओ, समाधि में चले जाओ और भगवान को एक्सेप्ट ही ना करो। ऐसे भी लोग होते हैं नहीं, जिनको आत्मा में इंटरेस्ट होता है परमात्मा में इंटरेस्ट, वो उनको कहते हैं ज्ञानी लोग। ऐसा ज्ञान नहीं दे रहे, भक्ति में जाने के लिए ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए ये जो ज्ञान योग है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम भक्ति योग भी कह सकते हैं। भक्ति योग में हेल्प कर रहा है ना, जो भी चीज भक्ति में हेल्प करती है वो भी क्या बन जाती है, भक्ति। सिंपल हो गया है नहीं? तो गाड़ी चलाना भक्ति है नहीं है? वैसे हाँ या ना, इसका आंसर बताओ, गाड़ी चलाना भक्ति है नहीं है? क्या आंसर करोगे, यस और नो? हाँ डिपेंड करता है, आप पूछो क्यों चला रहे हो, नहीं तो उसके बाद आंसर करेंगे। ऐसे नहीं बोल सकते। सो ठीक है, अगर गाड़ी को आप चला के मंदिर में आ रहे हो तो भक्ति है, क्योंकि मंदिर भक्ति करने में हेल्प कर रही है। और आप मैकडोनल्ड जा रहे हो तो भक्ति नहीं है, सिंपल। तो इसलिए ज्ञान योग को भी प्रभुपाद ने भक्ति योग से ट्रांसलेट किया, पढ़ना गीता में कई बार प्रभुपाद ज्ञान योग कर्म योग दोनों को भक्ति योग कह रहे हैं, आप पढ़ के देखना, क्योंकि हेल्प कर रहा है। समझ गए नहीं समझ गए? इसलिए वो नॉलेज जो भक्ति करने में हेल्प करती है वो भी भक्ति ही है, सिंपल सी बात है। जो नॉलेज भक्ति में हेल्प नहीं कर रही वो भक्ति नहीं है। इसलिए असली ज्ञान योगी कौन है? भक्ति योगी। क्योंकि असली ज्ञान योगी अपनी पूरी एनालिसिस से इस निष्कर्ष से पहुंच जाएगा कि भैया मैं आत्मा, मुझे सेवा करनी है। और जो ज्ञान योगी भक्ति तक नहीं पहुंचता, अगर आप अपने ज्ञान योग से भक्ति तक नहीं पहुंचो तो वो कौन है? तो वो भक्ति योगी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? उसको ज्ञान योगी बोल देंगे। समझ गए नहीं समझ गए? बस सिंपल सी बात है। सो ज्ञान योग भक्ति योग भी हो सकता है अगर वो भक्ति योग में हेल्प कर रहा है। अगर भक्ति योग में हेल्प नहीं कर रहा तो ज्ञान योग वो कुछ नहीं है, वो ज्ञान ही है बस, सिंपल ज्ञान योगी बन जाएगा वो। इसलिए प्रभुपाद ने इसको भक्ति भी ट्रांसलेट किया। ओके उसके बाद प्रभुपाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं 38 श्लोक से 38 श्लोक तक स्वधर्म के बारे में, मतलब कृष्णा एक्सप्लेन कर रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन ठीक है, तुम शरीर हो तुम आत्मा हो, तुम्हारा कर्तव्य मेरी सेवा करना, तो तुम लड़ो। उसको प्रेरित करना है लड़ने के लिए, एक लक्ष्य तो यही गीता का। और फिर वे भगवान ने स्वधर्म की बात की, अर्जुन तुम क्या हो? क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म क्या? लड़ना। और तुम अभी फालतू की बात क्यों कर रहे हो? नहीं लड़ना। तुम अधर्म के तुम धर्म के लॉजिक दे रहे हो मगर कर रहे हो धर्म, बोल रहे हो धर्म के बारे में पहले अध्याय में कि कृष्णा हम लड़ेंगे तो धर्म की हानि होगी, श्राद्ध नहीं होगा, पिंडदान नहीं होगा, जो भी नहीं होगा, मगर कर रहे हो अधर्म। क्षत्रिय तुम्हें लड़ना चाहिए, तो क्या नॉनसेंस है? तुम तो खुद ही कंफ्यूज हो तुम बुरी तरह। सो भगवान स्वधर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं कुछ श्लोक में, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आपको ज्ञान मिल जाएगा ना, ये आत्मा और शरीर का भी तो थ्योरी मिली है ना, अनुभव तो नहीं हुआ कुछ, अनुभव तो जीरो है ना, जीरो है, थोड़ा थोड़ा है, नहीं अनुभव तो ज्यादा नहीं है। अभी वो शेर आ जाएगा, भाग जाओगे, आपको आप नॉलेज ही नहीं कि मैं आत्मा नहीं, आत्मा हूँ, कन्विंस नहीं हो ना। अगर प्रहलाद महाराज के सामने शेर आए तो उन्होंने क्या किया, तो आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ हो ही, डर ही नहीं लग रहा उनको, पता शरीर कोई खाएगा मुझे, तो मुझे थोड़े ना मार सकता है वो, यस ओके फाइन दैट्स ऑल। सो इसलिए हम अभी अभी हम पूरी तरह कन्विंस नहीं है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और इनफैक्ट कोई कह सकता है यार कि मेरे सामने शेर आया था मैं तो डरा नहीं, होते नहीं लोग होते नहीं होते हैं, मैं तो नहीं डरा। अब सर्कस में जो शेर वाले होते हैं वो तो कहते हैं हम तो नहीं डरते, तो फिर इसका मतलब है क्या वो शरीर से ऊपर उठ गया, क्या कहोगे आप? मिलिट्री वाले नहीं डरते किसी से भी, वो नहीं था मैन वर्सेस वाइल्ड, नहीं आ रहा था सीरियल मैन वर्सेस वाइल्ड, आता नहीं था वो मिलिट्री वाला, उनको मिलिट्री वाले को जंगल में छोड़ दो, सांप आप खा जाएंगे, मार मूर के जिंदा रहेंगे, डर ही नहीं लगता उनको, कहेगा देखो हम तो आत्मा के अनुभव है हमें तो तो उनको क्या आंसर करोगे आप, क्या आंसर करोगे? कुछ तो करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा ना तुम आत्मा के स्तर पे नहीं हो, कैसे बताओगे, क्या कहते हो? कुछ तो बोलो भाई, क्या हो गया?
उसको बताने ही क्यों पड़ेगा क्योंकि वो आत्मा के बारे में कुछ जानते
हैं। ओहो, एक प्रोजेक्ट है उसको बताना है अब कैसे बताओगे उसको? लोग तो कहते हैं ना, लोग तो कहेंगे, हम बोलेंगे शरीर के सर पर डर लगेगा, और आप ऑर्डिनरी आदमी भी कहेगा मैं तो नहीं डरता, ओके मृत्यु से डर लगेगा मैं तो नहीं डरता, यही कहते हैं ना लोग, तो ठीक है, तो फिर मैं तो पहले आत्मा के सर पे हूँ, मगर आपको उसको बताना है तो आत्मा के सर पे नहीं है, तो कैसे बताओगे? वही मेरा क्वेश्चन है। यस, क्योंकि अगर शरीर के स्तर पे हो तो शरीर शरीरों से और शरीर से संबंधित चीजों से आकर्षण होगा आपको, वरना आकर्षण नहीं होगा। अगर आप शरीर के स्तर पे तो सोच रहे हो ना मैं पुरुष हूँ, तो स्त्री से आकर्षण होगा, या स्त्री सोच रही है मैं स्त्री हूँ उसको पुरुष से आकर्षण होगा, या अगर आप सोच रहे हो मैं शरीर हूँ तो शरीर से संबंधित चीज़ों से आकर्षण होगा, अपने बच्चों से, अपने चीज़ों से, क्योंकि आप सोच रहे हो ना मैं हूँ, तो अगर आकर्षण हो रहा है इसका मतलब शरीर के स्तर पे, तो उसे बोलो ठीक है तू डर नहीं रहा मगर तुझे आकर्षण तो है ही, इन चीज़ों तो अटैच तो है ही अपनी फैमिली से, तुझे अपने ही लगते हैं ना वो, हाँ सो इसका मतलब वो शरीर के स्तर पे। क्योंकि अगर आप कन्विंस्ड हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ना पुरुष हूँ ना स्त्री हूँ, संसार का कुछ भी मेरा नहीं है, ना मैं इसका हूँ, मैं केवल भगवान हूँ, तो खत्म हो गया आकर्षण, फिनिश। तो इन दो चीज़ों आप उसको बोल सकते हो और उसको वहाँ पे बता सकते हो, देखो तुम अभी भी शरीर के स्तर पे हो, जो निर्भय हो वो तो तुमने ट्रेनिंग से कर लिया है, वो कोई सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, वो तुम ट्रेंड हो, वो और कुछ नहीं है, ट्रेंड हो। आसुर भी ट्रेंड होते हैं, रावण हवन कौन सा। सो बट व्हाट अबाउट आकर्षण? सो इसलिए भगवान ने स्वधर्म की बात की है, नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि इन सब चीजों आत्मा को अनुभव करने के लिए थोड़ा मन शांत चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अनुभव नहीं, पहले तो समझने के लिए, ये सारी चीजें समझने के लिए मन शांत चाहिए, नहीं चाहिए। अगर मन ही शांत नहीं होगा तो फिर तो आप समझोगे या सुन भी नहीं पाओगे, है नहीं? जैसे अर्जुन का मन शांत ही नहीं है, कह रहे भगवान मैं क्या लड़ू नहीं लड़ू, मैं तो परेशान हो गया हूँ, क्या हो रहा है? भगवान ने कहा तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो तो इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई मरेगा नहीं मारो। तो कहेगा भगवान मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कोई मरेगा नहीं और मैं मारूं, और मारने पे भी नहीं मरेगा, ये क्या हो रहा है ये मतलब ये दुखी अवस्था में आप नहीं समझ सकते ये सब, है नहीं? अगर आपके फैमिली में किसी की डेथ हो गई और मैं आके बोलूं भैया देखो ऐसा है कि तुम मरते तुम ये मरा नहीं है, ये लग रहा है मर रहा है मगर एक्चुअली मरा नहीं है, ये आत्मा है, मन बुद्धि अहंकार होता है, पांच तत्व होते हैं, अब ये दिमाग मत खा तू, अभी बाद में सुनूंगा मैं, आप समझ नहीं सकते कुछ भी। सो अर्जुन का शोक खत्म करने के लिए भगवान ने स्वधर्म की बात भी की है कि भैया ऐसा है कि तू फालतू में पागल क्यों हो रहा है, सिंपल लॉजिक है, लड़ना है नहीं लड़ना है, तू क्षत्रिय और लड़ना है, बस हो गया, सिंपल हो गया नहीं हो गया? अब तू सोच रहा है कि धर्म क्या है, अर्जुन सोच रहा है धर्म क्या है, लड़ू नहीं लड़ू, क्या करूं क्या ना करूं। भगवान ने कहा यार सिंपल है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म लड़ना है, बस काम खत्म हो गया, दैट्स ऑल फिनिश, दैट्स ऑल। स्वधर्म की बात की, स्वधर्म फॉलो करने से मन शांत रहता है, होता है नहीं होता है? अगर आप झूठ बोलना शुरू कर दोगे ना तो चांटे के मन ही नहीं लगेगा, आप देख लेना। चाहे झूठ बोलना साधारण लौकिक चीज है, उसको भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, मगर आपका मन नहीं लगेगा क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो, आपको पता है कि ये क्या है, अधर्म है, नहीं गलत है ना। हाँ सोचोगे हो यार मैंने तो गलत काम कर दिया, उसको झूठ बोल दिया, उसको झूठ बोल दिया, होता है नहीं होता है। सो इसलिए भगवान ने स्वधर्म की बात की कि जो आपका धर्म है वो भी फॉलो करो सही से। सो स्त्रियों का धर्म है, पुरुष का धर्म है, हस्बैंड का धर्म है, वाइफ का धर्म है, बच्चों का धर्म है, उसके बाद क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य नहीं जो लोग हैं, सबका अपना धर्म है। कुछ जनरल धर्म है, सत्य बोलना, शौचम, क्लीनलीनेस, दया, ये सारे जनरल धर्म है ना। ये भी अगर थोड़ा बहुत सोशल लेवल पे फॉलो करना ज़रूरी होता है, वरना सब केओस हो जाएगा, सब अशांति हो जाओगे, आपका माइंड ही अशांत हो जाएगा। अगोगे इसको भक्ति जगा लेने देना, साफ रहने को, सफाई से क्या मतलब है भक्ति का? नहीं, मैं चैंटिंग करूँगा बस, और उसमें क्या है, मैं एक महीने तक अपनी पैंट नहीं धोऊंगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है? पैंट धोने थोड़ा ना कि भक्ति आ जाएगी धोती धोने से। बट द पॉइंट इज, अगर आप ने क्लीननेस नहीं रखी तो मन क्या होगा? मन डिस्टर्ब होगा, गंदगी में मन डिस्टर्ब होगा, मन डिस्टर्ब होगा तो चैंटिंग अब नहीं कर पाओगे। इसलिए धर्म की चर्चा भी भगवान ने की, अर्जुन तुम हमें बता रहे हैं कि इस चीज आत्मा और शरीर को समझने के लिए मन की शांति तब होती है जब थोड़ा बहुत व्यक्ति धर्म भी फॉलो करता है। धर्म उतना फॉलो करो कि मन शांत रहे और चैंटिंग कर पाओ और समझ पाओ चीजें। इतना फॉलो मत कर लो धर्म की, धर्म ही रुकावट बन जाए भक्ति में, वो भी होता है नहीं। इसलिए भगवान ने क्या बोला, सर धर्मान, उस धर्म को छोड़ दो जो कि रुकावट ही बन जाए। एक्स्ट्रा शांति आ गई आपको एक्स्ट्रा शांति भी प्रॉब्लम होती है, होती है नहीं होती है? आपने इतना धर्म कर लिया, दान कर लिया, पुण्य कर लिया, और आप इतने संतुष्ट हो गए, इतना अच्छा है, किसने बताना है अभी तुम आत्मा और शरीर नहीं, जन्म इतने फंसे पड़े हो, कोई जरूरत ही नहीं, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। सो ये प्रतिकूल हो गया नहीं गोल समझने के लिए। सो इसलिए भगवान ने स्वधर्म की बात की उसके बाद, और फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है फिर। मगर प्रॉब्लम ये है कि आप अगर मन शांत हो जाएगा, आप सुन तो लोगे, थोड़ा समझ भी लोगे, वैसे अभी समझ रहे हो, मगर अनुभव नहीं कर सकते उस चीज को। अनुभव करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कुछ टेक्निक लगानी पड़ेगी ना, अनुभव कैसे होगा, कोई टेक्निक तो होनी चाहिए। अब क्या क्या करूं मैं, समझ आ गया, हजार बार सुन लिया मैं आत्मा शरीर नहीं हूं, करें क्या, अब अनुभव तो आ नहीं रहा, क्या करें, आंख बंद करके बैठ जाओगे, कुछ होगा ही नहीं, थोड़ी देर बस सो जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, कोई टेक्निक नहीं है, आंख बंद करके बैठ जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला उससे। सो टेक्निक क्या है, इसलिए तीसरा टॉपिक जो सेकंड चैप्टर में भगवान बता रहे हैं, 38 श्लोक से लेकर कहां तक बताएंगे, आई थिंक 54 श्लोक तक, हाँ 54 तक भगवान ने, या 53rd तक, 53rd श्लोक तक भगवान ने कर्मयोग के बारे में चर्चा की। इस आत्मा को अनुभव करने के लिए कर्मयोग करना पड़ता है। अब कर्मयोग क्या है, कर्म मतलब काम, योग मतलब वो काम जो भगवान से जोड़ दे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम सेवा। सेवा ही तो है कर्मयोग, जो कर रहे हैं, जो काम भगवान से जोड़े, झाड़ू मारना, कुकिंग करना, सेवा ही तो है। तो कर्मयोग मतलब सेवा, और सेवा मतलब भक्ति योग। इसलिए प्रभुपाद ने कर्मयोग को क्या क्या लिखा है गीता में, भक्ति योग लिखा है, पढ़ना, और पढ़ना जाके सेकंड चैप्टर, हर जगह प्रभुपाद कर्मयोग को भक्ति योग लिख रहे हैं, क्योंकि सेवा सेवा क्या है, सेवा भक्ति तो है नहीं, भक्ति ही सेवा है, और क्या है मेन चीज भक्ति में, क्या सेवा। भक्ति में और भी चीज है, भगवान का नाम लेना, कीर्तन, श्रवण कीर्तन भी है, ज्ञान भी है, हमने बात की, मगर सेवा मेन चीज है। इसलिए प्रभुपाद ने सेवा को क्या लिख, कर्मयोग को क्या लिख दिया, भक्ति योग। सो ठीक है, बिल्कुल सही है, कर्मयोग भक्ति योग ये हो सकता है, उसमें क्या है। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कर्मयोग करने से, सेवा करने से अनुभव हो जाएगा, कि आप आत्मा और शरीर में, वरना पढ़ते रहोगे कभी अनुभव नहीं होगा, कभी भी अनुभव नहीं होगा। जैसे हम बात नहीं कर रहे थे, यूज कर रहा था कि भागवतम मिलेगा, कि भागवतम सुनने मात्र से लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल सही है, मगर केवल सुनने मात्र से और सुनते रहने से ही नहीं होगा। या बैठे हो सुनते रह रहे हो, और सुन के क्या करनी पड़ेगी आपको, या सेवा, सेवा करनी पड़ेगी। नहीं और सुनिए तो रहे हो, सुनते सुनते थोड़ा ना हो जाएगा बैठे बैठे, आप बैठे बैठे एक कथा दूसरी कथा तीसरी चौथी पांचवी छठी सुनते ही रह रहे हो, सेवा क्या है आपकी पता नहीं, बोलने वाले की तो सेवा है आपकी क्या है। आपको क्या हमारी सेवा क्या, सुनना, सुनना थोड़े ना सेवा है, सुनना एक तरह से सेवा कह सकते हो आप, ये अपने कानों को सेवा में लगा रहे हो, मगर वो एक तरह से पैसिव सेवा है। पैसिव सेवा समझते हो, पैसिव सेवा कैसे कहेंगे, एक तो एक होता है एक्टिव सेवा, एक पैसिव सेवा। पैसिव पैसिव सेवा है जिसमें आप रिसीव कर रहे हो बस, है नहीं, आप पैसिव एजेंट हो, मैं बोल रहा हूँ आप, एक्टिव सेवा मैं कर रहा हूँ, है नहीं, आपका दिमाग नहीं चल रहा, आप तो बस जो मैं बोल रहा हूँ ले रहे हो अंदर, है नहीं, दिमाग किसका चल रहा है, मेरा, तभी तो आपको कभी कभी नींद आएगी लेक्चर में, लेक्चर सुनने वाले को नींद आती है, नहीं कभी कभी, हम भी बैठते हैं वहाँ तो हमें भी कभी कभी नींद आती है, क्योंकि हमारा दिमाग नहीं चल रहा होता, दिमाग सिर्फ लेक्चर वाले का चल रहा होता है, बाकी लोग कोशिश कर रहे होते हैं हमें घुस जाए अब सुन रहे हो, तो उसको कहते हैं पैसिव, आप लोगों की एक तरह से पैसिव सेवा है सुनना तो, बट उससे अनुभव नहीं आता। अनुभव किससे आता है, एक्टिव सेवा करने से, आप कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। सो इसलिए कर्मयोग मतलब आप कुछ एक्टिव सेवा कर रहे हो, उससे अनुभव आ जाएगा, वो टेक्निक है, वो टेक्निक आप क्या कर रहे हो, तो चैंटिंग एक एक्टिव सेवा हो गई, नहीं आप कुछ कर रहे हो ना भगवान के लिए चैंटिंग उस, और अब कोई मगर चैंटिंग को अभी अलग रहता हूँ, चैंटिंग अलग चीज़ है, क्लीनिंग, कुकिंग, भगवान के लिए फूल बनाना, ये सारी राइटिंग बुक या लेक्चर देना, ये सारी एक्टिव सेवा है। सो इसको कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोग क्या हो गया फिर, इसका मतलब भक्ति योग हो गया, कर्मयोग मतलब एक्टिव सेवा, एक्टिव। इसलिए प्रभुपाद ने कर्मयोग, कर्मयोग को बुद्धि योग भी कहा है, बुद्धि योग भी शब्द आ रहे हैं यहाँ पे, सेकंड चैप्टर 38 वर्स में जाके देखना, बुद्धि योग आ रहा है इसमें। सो बुद्धि योग को भी प्रभुपाद ने कर्मयोग कहा है, सेकंड चैप्टर 38 वर्स, 38 कौन सी है, 39 में, नहीं नहीं नहीं, बुद्धि योगम 39 में, सेकंड चैप्टर 39 वर्स बुद्धि योग आ रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं बुद्धि योग मतलब कर्मयोग, क्योंकि बुद्धि जब चलती है तो किसी काम करने में बुद्धि चलानी पड़ती है ना, एक्टिव सर्विस करनी है ना, सो वो सेवा करो इसमें आपकी बुद्धि चल रही है, ऐसे वो में सेवा करो बुद्धि चली नहीं रही, करते जा रहे हैं तो फिर आपको कोई भी अनुभव फिर नहीं आएगा। सो कर्मयोग की बात की, सेवा की, और फिर उसके बाद अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ लिया, भगवान सेवा करेंगे आत्मा का अनुभव होगा, तो जो आत्मा के स्तर पे उसके लक्षण क्या है, ये फोर्थ टॉपिक है। या यूं समझ लो कि जो आत्मा के स्तर पे है इसका मतलब उसको प्रेम है भगवान से, सेवा करके प्रेम आएगा ना, प्रेम से अपने आप पता लग जाएगा मैं आत्मा हूं, तो उसका अनुभव क्या है। सो भगवान ने फिर वो चर्चा की है, जो आत्मा के स्तर पे है उसका अनुभव क्या है, एंड दैट्स वेरी नाइस कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पर। कौन सा श्लोक है, 58 श्लोक से है ना, 51 श्लोक से, जो आत्मा के स्तर पे 54 कृष्णा कह रहे हैं, जो जिसको प्रेम मिल चुका है उसके लक्षण क्या है, आप देख लो, आप चेक कर लो आपको प्रेम मिला है नहीं मिला है। या यूं समझ लो कि हमें अनुभव है आत्मा का या नहीं, वो क्वेश्चन ही पूछ रहे थे उससे मिलिट्री वाले से, उसको बताना था कि तू आत्मा के स्तर पे नहीं है, ओके यू कैन टेल दिस। श्री भगवान ने कहा हे पार्थ, आत्मा के स्तर पे व्यक्ति कौन है, आप बोल सकते हो उसको, भैया तू आत्मा के स्तर पे नहीं है, क्यों, क्योंकि जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, वेरी गुड, सारी कामनाओं को त्याग कर दिया उसने, खत्म हो गई इंद्रिय तृप्ति की, अपने लिए आप कुछ नहीं चाहते, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, सो किसी में संतोष नहीं आ रहा सिर्फ आत्मा में, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहलाता है, तब समझ लो कि प्रेम आ गया। दिस इज बिग प्लेटफॉर्म नहीं, तो तीन तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। तीन ताप मतलब आपको बीमारी हो रही है, साइक्लोन आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, फिर भी मन विचलित नहीं है। आपकी गाड़ी थक गई मगर आप नहीं थक रहे, चल जाना ठीक, आप खुश हो, तो गाड़ी तो खराब होगी होगी मगर मेरा काम भक्ति करना है पूरे फुल फोर्स से, ठीक है। जब तक ये शरीर चल रहा है हम पूरी यूज करेंगे, बाकी इसको खत्म तो होना ही उसमें गया। सो विचलित नहीं, अथवा सुख में भी प्रसन्न नहीं होता, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, ये करना बहुत मुश्किल है। दुख में दुखी नहीं होना तो आसान है, सुख में प्रसन्न नहीं होना वो मुश्किल है। आप देख लो, सोच के देख लो, है नहीं? दुख में दुखी नहीं होना तो वो तो कहेगा चल ठीक है यार, मगर सुख में प्रसन्न नहीं होना बड़ा मुश्किल है। आके हंसी आ ही जाएगी, आपको रोक नहीं सकते, आपको आइडिया भी नहीं आएगा मुझे रोकना है, ये आइडिया नहीं आएगा। सुख में सुखी क्यों ना हो, आइडिया नहीं आएगा। मगर जो प्रेम के स्तर पे वो सुख में भी प्रसन्न नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सुख में प्रसन्न? क्या ये क्या है? हाँ, क्योंकि उसके लिए वो सुख सुख सुखी नहीं है, उसको सुखी नहीं लग, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, मूवी देखने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो सुखी नहीं लग रहा। पहले सुख में सुख लग रहा था वो, वो भक्ति की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ साधारण भक्ति को अब यहाँ पे मतलब ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, साधारण चीजों की बात करते हैं संसार के परिप्रेक्ष्य में। तो सुख में प्रसन्न नहीं होता क्योंकि हमें सुखी नहीं लग रहा, दैट्स ऑल। सब स्वप्नवत, सपने की तरह। जो आसक्ति भय क्रोध से मुक्त है, सो बिग प्लेटफॉर्म है आसक्त, उसमें तो भय नहीं है मिलिट्री वाले में, मगर आसक्ति तो है। तीन चीजें थी ना, ठीक है, तुम निर्भय हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसक्ति का है तुम्हारी, और क्रोध वो भी है तुम में, वह स्थिर मन वाला मुनि उसमें प्रेम है, ये सारे प्रेम के लक्षण है। सो बिग प्लेटफॉर्म है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति में हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है। सो कोई उसके अशुद्ध हो गया उसे घृणा भी नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा, शुभ हो गया तो उससे उसमें हर्षित भी नहीं होगा, ठीक है। संसार में अच्छी बुरी चीजें तो चलती रहती है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर है, उसको प्रेम है, क्योंकि प्रेम में संसार विस्मृत हो जाता है। ऐसा नहीं हमें कोशिश कर रहे हैं करने की, हम कोशिश नहीं करते सुख में सुखी नहीं होना, दुख में दुखी नहीं, वो तो ज्ञानी लोग करते हैं आर्टिफिशियली, ट्राई करते रहते हैं और फिर उल्टी पुल्टी चीज़ें करते हैं, जानबूझ के सिगरेट पिएंगे, कहेंगे देखो मुझे तो आनंद आ ही नहीं रहा, वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी ने। सो अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं भाई, और देखो मैं इफेक्ट नहीं हो रहा, मगर भक्ति प्रोसेस नहीं है। भक्ति प्रोसेस में हम ये कोशिश नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आने की, अपने आप भक्ति के प्रभाव से संसार विस्मृत हो जाएगा और हम ये सारे लक्षण आ जाएंगे। जब प्रेम मिलेगा ना भगवान की कृपा से तो अपने आप हो जाएगा, प्रेम में भूल लेंगे संसार का सुख दुख, तो सुख में सुखी नहीं होंगे, दुख में दुखी नहीं होंगे, आपको मतलब ही नहीं होगा, दैट्स ऑल। सो ये भक्ति का रास्ता बिल्कुल अलग है और बहुत सुखम है। नहीं, अगर आप कोशिश करो करने की तो पागल ही हो जाओगे, कर नहीं पाओगे आप सुख में सुखी नहीं होना, क्रोध भय आसक्ति से मुक्त होना, कहोगे यार ये तो असंभव है। अगर भक्ति इतनी अच्छी है कि भगवान अपनी कृपा से करा देते हैं, सो सेवा करते करते अनुभव अपने आप आने लगते हैं, अपने आप सब कुछ भूलने लगते हो आप, क्योंकि भगवान में इंटरेस्ट आ गया, भगवान आपका मन हटा लेते हैं ना वहाँ से, अपने में खींच लेते हैं जिस प्रकार। और ये तो चलो, सो भगवान ने ये सारी चीज़ें कही हैं और फिर कृष्णा ने ये चैप्टर एंड कर दिया और उन्होंने बोला कि अगर ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता, यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। यूसी सारे टॉपिक्स आ गए, नहीं आ गए चैप्टर में? आत्मा का टॉपिक आ गया, शरीर का आ गया, प्रेम का आ गया, प्रेम के लक्षण आ गए, भगवान के धाम जाने का आ गया, सेवा का आ गया, धर्म का आ गया। इसलिए इस अध्याय का नाम क्या? गीता का सार, इसलिए अध्याय का नाम है। और चलो अब तो आपको पहले से पता है सबके बारे में, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, मगर अगर पहली बार सुन रहे हो तो 1000 क्वेश्चन होते हैं, नहीं? हाँ भाई, प्रेम होता क्या है? आप कह रहे हो कि भक्ति करने से अपने आप हो जाएगा, अपने आप कैसे हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करनी नहीं करनी, नहीं तो ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ है, भक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो ये सारे क्वेश्चन अर्जुन पाल से पूछ रहे हैं, इसलिए गीता और आगे बढ़ती जा रही है। अदरवाइज ये चैप्टर अपने में सफिशेंट है। तो अगर आपको रोज़ कोई चैप्टर पढ़ना है तो सेकेंड चैप्टर पढ़ लो, बस गीता का सार है, आपको पूरी पूरी चीज़ फ्रेश हो जाएगी माइंड में, कभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। रोज़ पढ़ सकते हो सेकेंड चैप्टर, ज़्यादा श्लोक ज़्यादा है 72, सेम हिंदी पढ़ सकते हो अगर वैसे, एंड दैट्स वेरी नाइस। हरे कृष्णा, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? स्टॉप यार, क्या क्वेश्चन है? हाँ, ये बात सही है, कुछ समझ ही नहीं आया। ओके, सो जाके पढ़ लीजिएगा प्लीज सेकंड चैप्टर। अभी तो मैंने ओवरव्यू बताया है, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में। आप ये भी देख सकते हो कि भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान कितने इंटेलिजेंट है। नहीं, सांख्या योग का सार निकाल दिया, उसके लिए बुद्धि चाहिए। नहीं, भगवान सुपर इंटेलिजेंट है, अपने डिवोटी को डांट रहे हैं, केयरिंग है। नहीं, भगवान कितना ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का, उनको माया में नहीं पड़ने देते, और फिर सेवा के लिए उत्साहित कर रहे हैं हमें। सो ही इज़ अ गुड फादर, जो इंस्पायर करते हैं हम लोगों को, नहीं कंडेम नहीं करते। कॉन्डिसेंट, कॉन्डिसेंट समझते हो, नीचे नहीं दिखाते तुम सेवा गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, नहीं हो, कह रहे हैं करो, करने से अनुभव आ जाएगा, चिंता मत करो। सो इंस्पायर भी करते हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं। गंदा टीचर तो रहेगा, ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, अच्छा टीचर रहेगा, हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, कोशिश करो और करने की, है नहीं, उल्टा कहते हैं। और फिर उसके बाद रिलीजियस भी हैं, मतलब स्ट्रिक्ट भी हैं, कह रहे हैं धर्म फॉलो करो अच्छी तरह, मतलब हैंकी पैंकी नहीं, जितना हो सकता है। और अच्छे टीचर हैं, अच्छा टीचर केयरिंग भी होता है और स्ट्रिक्ट भी होता है, वरना फेल हो जाओगे, है नहीं। तो स्ट्रिक्ट भी हैं कृष्णा, और फिर उसके बाद प्रेमी भी हैं, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और प्रेम करना चाहते हैं। तभी तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इसको प्रेम मिल गया वो मेरे धाम वापस लौट के आ जाते हैं, उसको अपने पास रखना चाहते हैं भगवान। सो इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं। तो आप जाके पढ़ोगे ना तो आपको इस अध्याय में नॉलेज भी नज़र आएगी, भगवान का स्वभाव भी नज़र आएगा और प्रेम भी नज़र आएगा, सब कुछ है, कंप्लीट चैप्टर है। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।